पृष्ठ संख्या 136, 9। 7वें दशक में रचना के क्षेत्र में परिवर्तन के साथ ही आलोचना में भी परिवर्तन के लक्षण प्रकट होने लगे। गहमा गहमी का एक दशक पूरा करके नई कविता और नई कहानी के आंदोलन ठंडे होते दिखे तथा कवियों और कहानीकारों की एक युवा पीढ़ी ने नए तेवर के साथ साहित्य में प्रवेश किया, जिसका मुहावरा ही नया नहीं था बल्कि जिसकी यथार्थ दृष्टि का आग्रह भी प्रबल था। यह अवश्य है कि इस दौर के लेखकों के रुख सामान्यतः आलोचना विरोधी हैं, फिर भी समकालीन रचना के बीच से कुछ अपने आलोचक उभर ही आए। इन उदीयमान आलोचकों में मलयज और रमेश चंद्र शाह के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। मलयज ब्रैकेट में 1953 से 1982 के समीक्षात्मक लेखों का प्रथम संग्रह कविता से साक्षात्कार 1977, उनके जीवन काल में और शेष दो रचनाएं संवाद और एकालाप और रामचंद्र शुक्ल 1987 मरणोपरांत प्रकाशित हुईं। अपने पहले संग्रह कविता से साक्षात्कार के लेखों से ही मलयज ने अपनी आलोचनात्मक समझ की छाप छोड़ी। सरोज स्मृति के निराला का दुख उन्होंने अन्य छायावादी कवियों के दुख से अलगाकर पहचाना और तीसरे अज्ञेय की तलाश में अज्ञेय के वास्तविक मूल्यांकन की कुंजी उनकी काव्य पंक्तियों में चिन्हने का प्रयत्न किया। शमशेर के निर्मम काव्य शिल्प को उन्होंने उन्हीं के वक्तव्यों के सहारे खोलने का जोखिम उठाया। त्रिलोचन के दिगंत पर प्रक्रिया के रूप में मलयज ने अत्यंत सारगर्भित टिप्पणी की। त्रिलोचन की काव्य वस्तु और संवेदना को एकदम ठीक ठीक पहचानते हुए उन्होंने त्रिलोचन को औसत भारतीयता का कवि कहा। भारतीयता से अभिप्राय को स्पष्ट किया और अंत में उनकी कविता के बारे में ऐसे सवाल उठाए जिनके बारे में खुद मलयज का कहना था कि इन प्रश्नों पृष्ठ संख्या 137 के उत्तर की सरल सुविधा फिलहाल त्रिलोचन की कविताएं हमें नहीं देती। पृष्ठ 66। मलयज के इन आलोचनात्मक लेखों की निर्मम तटस्थता उनका प्रमुख आकर्षण है। वह न फतवे देते हैं, न नारे नुमा वाक्य उछालते हैं, पूरी संवेदनशीलता और आलोचनात्मक विवेक से धीरे से सही जगह उंगली रख देते हैं। ऐसे माहौल में जब उनके एकाधम उम्र आलोचकों की इकलौती पुस्तकों का समारोह धर्मी स्वागत किया कराया जा रहा था, मलयज की ओर जितना और जिस रूप में ध्यान दिया जाना चाहिए था, जाहिर है वह नहीं दिया गया। खुद मलयज अनेक समकालीनों के कृतित्व और रचनाकर्म से संबंधित प्रासंगिक मुद्दों पर विचार करते हुए जिन निष्कर्षों पर पहुँचे, उन्हें विनम्रतापूर्वक उन्होंने समकालीन जीवन और कविता की परस्पर संबंधों की खोज में आए विभिन्न पड़ाव कहा, यानी वह खुद को मंजिल तक पहुँचा हुआ सिद्ध नहीं साधक ही समझते रहे। संवाद और एकालाप मलयज के आलोचनात्मक लेखों का दूसरा संग्रह है। इन लेखों में मलयज ने अपने वरिष्ठ समकालीनों पंत और शमशेर, मुक्तिबोध, नरेश मेहता, लक्ष्मीकांत वर्मा, शाही, निर्मल, रघुवीर सहाय से लेकर रमेश चंद्र शाह तक के लेखन के साथ विजय सोनी के चित्र प्रदर्शनी पर भी लिखा है। दरअसल संग्रह का पहला लेख अमूर्त ज्यामिति के बाहर ही चित्र प्रदर्शनी पर लिखा गया है। शाही की आलोचना पद्धति को खुद मलयज ने कुछ इस तरह समझाया है। आलोचना को रचना की सघन और तनावपूर्ण शर्तों पर पाना मुझे हमेशा आकर्षित करता रहा है। आलोचना की सृजनात्मकता उड़ाने कविता में कल्पना की उड़ानों से किस कदर कम हो, एक बड़ी थीम को लेकर लिखी गई कविता या स्थापत्य और रेहट्रिक कुशल बुनावट और पच्चीकारी उस आलोचना में भी तो पाई जा सकती है जो रचना के भीतर से निकलने वाले प्रश्नों को संवेदना और दृष्टि के एक बड़े फलक पर पूरी विविधता के साथ प्रोजेक्ट करती है। पृष्ठ 40। खुद मलयज की आलोचना भी कुछ ऐसी ही शर्तों को पूरा करती दिखाई पड़ती है। यह बात अलग है कि जिन रचनाओं का चुनाव किया गया है उनमें प्रवृत्तिगत विविधता तो है ही, विधा की दृष्टि से भी अधिकांश साहित्य रूप विचार परिधि में आ गए हैं। गद्य रचनाओं का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक है। रचनात्मक साहित्य पर आलोचनात्मक और आलोचनात्मक साहित्य पर पृष्ठ संख्या 138 रचनात्मक लेख इस संग्रह का प्रमुख आकर्षण है। इस संग्रह में वस्तुतः आलोचनात्मक लेख कहने लायक कम ही है। शीर्षक के अनुरूप पत्र, नोटबुक, संबोधन, हर माध्यम से मलेच्छ रचनाकारों से संवाद या स्वयं से एक आलाप में संलग्न दिखाई पड़ते हैं। शब्द के परंपरागत अर्थ में ये समीक्षा लेख जैसे नहीं, कुछ रचनाओं को समझने की कोशिश भी प्रतीत होते हैं। मलेच्छ की तीसरी आलोचनात्मक पुस्तक रामचंद्र शुक्ल का संपादन नामवर सिंह ने किया। शुक्ल जी पर स्वतंत्र आलोचनात्मक पुस्तक लिखने का दायित्व साहित्य अकादमी ने मलेच्छ को सौंपा था। पुस्तक के उत्तरांश में प्रकाशित टिप्पणियों से जाहिर है कि मलेच्छ ने उसकी मुकम्मल तैयारी कर ली थी। व्यवस्थित लेख तीन है, पृष्ठभूमि, जीवन वृत्त और मिथ में बदलता आदमी। टिप्पणियों से उस पद्धति का बोध होता है जिससे शुक्ल जी को समझा गया है। इस पुस्तक की भूमिका में नामवर सिंह ने जिन विशेषताओं की चर्चा की है, वह कवि आलोचक मलेच्छ की आलोचना पद्धति और भाषा की समझ के ये बहुत दूर तक सहायक हैं। मलेच्छ ने आलोचना के शास्त्रीय प्रत्ययों के अंदर जाकर आचार्य शुक्ल के सामान्य मनुष्य की जिस प्रतिमा का निर्माण किया है, वह निश्चित रूप से हिंदी आलोचना के क्षेत्र में एक मौलिक सृष्टि है। किंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण वह पद्धति है जिससे उस प्रतिमा के उपादान और तत्व खोजे गए हैं। भाषा के बारे में नामवर सिंह का कहना है, आत्मसंघर्ष युक्त जनसंघर्ष की प्रक्रिया में मलेच्छ ने आलोचना की एक नई भाषा का विकास किया जो आचार्य शुक्ल की ही परंपरा में वस्तुमुखी, यथा तथ्य, तर्कनिष्ठ, भाव संवलित, सघन और सांद्र है। कहना ना होगा कि ये विशेषताएं उनके आत्ममुग्ध समकालीनों में विरल हैं। रमेश चंद्र शाह ब्रैकेट में 1940 ईस्वी आलोचक से अधिक सहृदय और रसज्ञ हैं। वह अशोक वाजपेयी से और बहुत सी बातों में भिन्न होने के अलावा इस बात में भिन्न है कि उन्होंने समकालीन कविता के साथ कहानियों की समीक्षा में भी रुचि दिखलाई। यूं तो उन्होंने छायावाद पर स्वतंत्र रूप से एक पुस्तक लिखी, किंतु उनकी उल्लेखनीय आलोचना पुस्तक है समानांतर 1973 ईस्वी और वाग्गर्थ 1981 ईस्वी, पृष्ठ संख्या 139, जो उनकी काव्य समीक्षा और कहानी समीक्षा दोनों का पूरा प्रतिनिधित्व करती है। शाह का बल सृजनात्मक समीक्षा पर है, जिसे छायावादी ढंग की प्रभाव अभिव्यंजक समीक्षा समझने का भ्रम नहीं होना चाहिए। इसके लिए वह रचनाकार की सृजन प्रक्रिया का आत्मीय विश्लेषण आवश्यक मानते हैं। स्वयं शाह के शब्दों में उनका आदर्श है वही संपूर्णता समझ और सहानुभूति की, दार्शनिक की सीसम गंभीरता और बौद्धिक तेजस्वीता, कलाकार की सी लाघवपूर्णता और परिष्कृत तथा वैज्ञानिक की सी एकाग्र तथ्य चिंता, निर्लिप्त और दक्षता। समानांतर पृष्ठ 16। शाह की अभिरुचि अज्ञेय के साहित्य में विशेष प्रतीत होती है जिससे उनके प्रतिमान निर्धारित हुए हैं। उनका मन कविताओं और कहानियों की भाषा की सृजनात्मकता के विश्लेषण में विशेष रूप से रमा है। इस दृष्टि से कुछ कविताएं, कुछ कवि तथा हिंदी कहानी भाषा दृष्टि शीर्षक निबंध द्रष्टव्य हैं। वाग्गर्थ के निबंधों में उनके आलोचनात्मक सरोकार का विस्तार कविता और कथा साहित्य से आगे बढ़कर साहित्य के बुनियादी सवालों तक हो गया है। संग्रह के पहले निबंध साहित्य में आज का गतिरोध में उन्होंने 40, 50 और 60 के आसपास होने वाली गतिरोध विषयक चर्चाओं में सन 70 को भी जोड़ने का प्रस्ताव किया है, पर टेक वही पुरानी है। भाषा में हम अनुभव को रचते ही नहीं, उसे पाते पहचानते भी हैं। कविता भाषा में अपने होने को पहचानना ही है। पृष्ठ 17। निबंधों के विषयों में विस्तार भी है, विविधता भी। हिंदी कवित्व और हिंदी गद्य, समकालीन रचना में स्वतंत्रता का अर्थ, पराधीन कल्पना एक दृष्टि, कुछ ऐसे ही निबंध हैं, पर उनकी मान्यताओं और नजरियों में कोई बुनियादी अंतर नहीं आया। जहाँ तक कृतियों के मूल्यांकन का प्रश्न है, कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर शाह ने कृतियों का मूल्यांकन करने की अपेक्षा उनकी सहानुभूतिपूर्ण व्याख्या तक ही अपने को सीमित रखा है, जो उनकी शक्ति भी है और सीमा भी। इन दो आलोचकों के अतिरिक्त समकालीन समीक्षकों में सुरेंद्र चौधरी और विजय मोहन सिंह कथा समीक्षा के लिए और अशोक वाजपेयी तथा विष्णु खरे काव्य समीक्षा के लिए उल्लेखनीय है। सुरेंद्र चौधरी की रुचि मुख्यतः समकालीन साहित्य के ऐतिहासिक, सामाजिक परिवेश तथा वैचारिक पक्ष में है। अशोक वाजपेयी, विजय मोहन सिंह और विष्णु खरे ने पुस्तक समीक्षाओं के पृष्ठ संख्या 140 माध्यम से सामान्यतः विध्वंसात्मक आलोचना के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मुख्यतः पुस्तक समीक्षाओं के रूप में लिखी जाने पर भी इनकी आलोचनाओं में कहीं कहीं सामान्य सिद्धांतों के भी संकेत प्राप्त होते हैं। इस आलोचना से हिंदी आलोचना के बदले हुए मिजाज का पता तो चलता ही है, आलोचना के बदलते हुए मुहावरे का बोध भी होता है। निर्मल वर्मा 1929 से 2005 ईस्वी, इन तमाम नामों के बीच एक विशिष्ट नाम कहानी का चिंतक निर्मल वर्मा का है। 8वें दशक में सक्रिय रचनाकार आलोचकों में सबसे वरिष्ठ निर्मल वर्मा की समीक्षात्मक और वैचारिक लेखों के तीन संग्रह शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम 1981 और ढलान से उतरते हुए 1986 प्रकाशित हुए। कहना ना होगा कि इस दौरान निर्मल वर्मा कहानियाँ और उपन्यास भी लिखते रहे। निर्मल के सृजनात्मक और चिंतन परक लेखन की विशेषता उनकी संजीदगी है। शब्द और स्मृति के प्राकथन में उन्होंने लिखा था, मेरे लिए निबंध एक दुनिया की चीज है, कहानियाँ दूसरी दुनिया की, किंतु कभी कभी उन पहाड़ों को देखते हुए दोनों की सीमाएं एक दूसरे में घुल मिल जाती थीं। यहीं प्रूस्त के हवाले से उन्होंने इन दो दुनियाओं की पहचान बताई है। हमारे सामान्य अनुभव समय की दुनिया में होते हैं, लेकिन ध्यान और स्मृति के क्षणों में दूसरी दुनिया की भी झलक मिल जाती है। पृष्ठ 12। इन दो दुनियाओं का अंतर काल और कालातीत का, यानी समय और शाश्वत का, अनुभव की भाषा में संदेह और आस्था का अंतर है। इन दो छोरों के घात प्रतिघात को, इनसे उत्पन्न तनाव को झेलना लेखकीय नियति भी है और शायद सृजनात्मक क्षण का सर्वोत्तम रूप भी है। एक से दूसरे में संक्रमित होने का विकल्प भी उसके पास है, जीवन में भी और रचना में भी। निर्मल का अधिकांश चिंतन इस कश्मकश की उपज है। एक साथ समय में और समयातीत होने के तनावपूर्ण अनुभव को झेलते और रचते रहने की अनवरत प्रक्रिया, जब इन दोनों चेतनाओं का समतोल एहसास व्यक्ति को एक ही समय में होता है, तभी वह एपिक संस्कार के सबसे निकट होता है और महाकाव्य की रचना का जोखिम उठाता है। निर्मल की दृष्टि में भारतीय साहित्य की समस्या है बने बनाए मूल्यों, वैचारिक रहस्यीकरणों और नैतिक पूर्वाग्रहों के सारे बोझ से मुक्त होने की, जिसने कि कलात्मक कल्पना को प्राणवान बनाने वाली मूल प्रेरणा को ही पृष्ठ संख्या 141 कुंठित कर दिया है। वही पृष्ठ 21। निर्मल वर्मा का सारा चिंतन सृजन प्रक्रिया पर केंद्रित है। उनके लिए बाहर की कोई भी घटना, चाहे वह ऐतिहासिक रूप से कितनी ही क्रांतिकारी क्यों न हो, लेखक को उस समय तक परेशान नहीं करती। ब्रैकेट में अपने सृजन में, जब तक वह घटना स्वयं उसकी सृजन प्रक्रिया की अनिवार्य शर्त न बन जाए। शब्द और स्मृति पृष्ठ 33। सृजन के बाद कलाकृत की स्वायत्तता के बारे में निर्मल का कहना है कि एक बार जन्म लेने के बाद हर कलाकृति की अपनी एक अलग जिंदगी हो जाती है। कलाकार और उसके संदर्भ से सर्वथा मुक्त, स्वयं अपनी शर्तों पर आधारित। वही पृष्ठ 33। निर्मल का सारा चिंतन इन्हीं सूत्रों से परिचालित होता है। कहने के लिए विचार का फलक काफी व्यापक है। सौंदर्य, नैतिकता, लेखकीय आस्था, संप्रेषण का संकट, समाज व्यवस्था, प्रासंगिकता का प्रश्न, परंपरा और इतिहास बोध, मिथक और यथार्थ, काल और सृजन, धर्म, धर्मतंत्र और राजनीति से लेकर भारतीय संस्कृति को जीवित रखने की जरूरत तक बहुत कुछ इस विचार परिधि के भीतर आ गया है। पर प्रश्न विषयों की व्यापकता का नहीं है, बल्कि यह है कि आप केंद्र में खड़े व्यापकता को आलोकित कर रहे हैं या व्यापकता को केंद्रोन्मुख कर रहे हैं। निर्मल का मार्ग दूसरा है। वह तमाम प्रश्नों की सार्थकता और प्रासंगिकता उनकी केंद्रीयता यानी सृजन कर्म की सापेक्षता में देखते हैं। व्यापक सामाजिक प्रक्रिया से जुड़ने का अर्थ उनकी दृष्टि में है, जहाँ मनुष्य स्वयं इतिहास का अतिक्रमण करके अपने से मुक्त हो सकता हो। कला का जोखिम पृष्ठ 23। सर्जक व्यक्ति से आरंभ करके अतिक्रमण की उन सीमाओं में सामुदायिकता, सामाजिकता या फिर मुक्ति का बोध या अबोध, जो अमूर्त रहस्यवादिता का कर स्पर्श करती हो, चिंतन की ऐसी दिशा है जिससे सहमति कठिन है। इसके बावजूद निर्मल ने बराबर अपने पक्ष विपक्ष में सोचने की मजबूरी पैदा की है, कुछ वैसे ही जैसे अज्ञेय ने अपने विरोधियों को कभी यह सुविधा नहीं दी कि वह उनकी उपेक्षा कर सकें। निर्मल ने भी स्वयं केंद्र में रहते हुए सहमति असहमति दोनों स्थितियों में तीखी प्रतिक्रियाओं को प्रेरित किया। इसके अलावा उन्होंने अपने समय के प्रमुख रचनाकारों की अत्यंत प्रभावी समीक्षाएं लिखीं। इन समीक्षाओं में ध्यान देने की बात रचनाकारों का पृष्ठ संख्या 142, चुनाव तो है ही, उस मूल विशेषता का संकेत भी है जो एक ही समय में स्थित इन साहित्य कर्मियों की निजी पहचान बनाती है। रेणु में उन्हें समग्र मानवीय दृष्टि दिखाई पड़ी, तो अज्ञेय में आधुनिक बोध की पीड़ा। मुक्तिबोध की कविता के मुकाबले उनकी गद्य कथा पर लिखना निर्मल को ज्यादा रुचिकर लगा, तो भी इस बात का एहसास बराबर बना रहा कि मुक्तिबोध का पूरा काव्यालोक उनकी दृष्टि में मौजूद है। इसलिए निष्कर्षों में मुक्तिबोध समग्रता में विद्यमान है। कहानी में जो बर्फ की तरह जमा दिखाई देता है, कविता में वही बिजली के करंट सा बहता हुआ मुक्तिबोध की समूची अंतरयात्रा को आलोकित कर देता है। कला का जोखिम, पृष्ठ 90। निर्मल की इन समीक्षाओं में प्रकट होने वाली समझ उन दर्जनों आलोचनात्मक लेखों की तुलना में कहीं विवेकपूर्ण और वजनी है जो इन कृतिकारों पर समय समय पर लिखे गए। संप्रति हिंदी आलोचना अपनी नाति दीर्घ ऐतिहासिक यात्रा के बाद अनेक प्रकार की असंगतियों से घिर गई है। निसंदेह वह हर नए रचनात्मक प्रयास के प्रति निरंतर जागरूकता का दायित्व तो निभाती रही है, किंतु इस प्रक्रिया में समसामयिकता का आग्रह अधिक प्रबल हो गया है। आज के युवा आलोचक समसामयिक लेखन से इतने आक्रांत हैं कि उनकी दृष्टि सुदूर अतीत के लेखकों पर एकदम नहीं और निकट अतीत के लेखकों पर बहुत कम जाती है। ऐसा लगता है कि आज के आलोचक को अपने पूर्ववर्ती साहित्य के पुनर्मूल्यांकन के लिए अवकाश ही नहीं है। परंपरा से ऐसा संबंध विच्छेद हिंदी आलोचना के इतिहास में पहले कम ही हुआ है। स्वभावतः इससे हिंदी आलोचना के विकास को धक्का लगा है। रोजमर्रा की पुस्तक समीक्षाओं ने अधिकांश आलोचना कर्म को कोरी व्यावहारिक समीक्षा के रूप में निःशेष कर दिया है। फलस्वरूप आज साहित्य के सैद्धांतिक प्रश्नों में उलझने का उत्साह बहुत कम दिखाई देता है। इस प्रकार एक और सैद्धांतिक आलोचना का मैदान अपने आप अकेडमिक आलोचकों के हाथ, जहां वह प्रासंगिकता की परवाह किए बिना काव्यशास्त्र, सौंदर्य आदि की शास्त्रीय चर्चाओं से भरे भारी भरकम ग्रंथों के द्वारा हिंदी आलोचना को समृद्ध करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। दूसरी ओर इतिहासकारों और समाजशास्त्र के विद्वानों ने साहित्यिक रचनाओं का उपयोग स्रोत सामग्री के रूप में करते हुए साहित्य में मूल्यांकन की नई दिशाएं प्रस्तावित की हैं। मध्यकालीन काव्य के पृष्ठ संख्या 143 संदर्भ में इतिहास के सुविख्यात विद्वान इरफान हबीब और हरबंस मुखिया का नाम उल्लेखनीय है। आधुनिक उपन्यास साहित्य और उसमें भी विशेष रूप से प्रेमचंद के साहित्य का उपयोग प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पूरन चंद्र जोशी ने अपनी पुस्तक परिवर्तन और विकास के सांस्कृतिक आयाम 1987 में और श्याम चरण दुबे ने परंपरा इतिहास बोध और संस्कृत 1991 में किया है। यह आकस्मिक नहीं है कि दोनों की दिलचस्पी प्रेमचंद के साहित्य में है, क्योंकि दोनों का आग्रह ग्रामीण समाज व्यवस्था को समझने पर है और भारतीय ग्राम जीवन और संबंधों का जितना अनुभव गम्य प्रामाणिक रूप प्रेमचंद के उपन्यासों के माध्यम से सुलभ है, शायद ही किसी दूसरे स्रोत से होता। इन समाजशास्त्री आलोचकों का महत्व हिंदी आलोचना को एक नया परिप्रेक्ष्य और पद्धति देने की दृष्टि से है। इस संदर्भ में विश्वनाथ त्रिपाठी का उल्लेख भी आवश्यक है। अन्य रचनाओं के अलावा उन्होंने तुलसीदास और हरिशंकर प्रसाई पर जिन आलोचनात्मक पुस्तकों की रचना की, उनका महत्व वस्तुवादी दृष्टि और सामाजिक संदर्भों से जोड़कर साहित्य का अध्ययन करने की पद्धति से विशेष है। इसके अलावा उनकी कथा समीक्षा के लेखों का एक संग्रह है, कुछ कहानियाँ कुछ विचार। पूर्व कथन में उन्होंने लिखा है कि इस संकलन में मेरे अनेक प्रिय या महत्वपूर्ण समझे जाने वाले कहानीकारों पर विचार नहीं हो पाया है। यह वाक्य संग्रह के लेखों की प्रकृति का खुलासा करता है। जिन पर विचार हो पाया है वह महज कहानियां नहीं कहानीकार हैं, क्योंकि विचार का दायरा कहानी केंद्रित नहीं, उससे कहीं विस्तृत है। योजनाबद्ध तरीके से नहीं लिखे जाने पर भी यह पुस्तक हिंदी की कथा समीक्षा की महत्वपूर्ण कड़ी है। सभी विचाराधीन रचनाकार कथा साहित्य की जितनी प्रतिष्ठित हस्तियां हैं उतना ही महत्वपूर्ण है रचनाओं का चयन। संग्रह के आरंभिक 5 लेख क्रमशः अमरकांत, शानी, रेणु, कृष्णासोबती और ज्ञानरंजन की कहानियों पर केंद्रित हैं। अंतिम 2 समकालीन कहानी, कुछ विचार और बदलते समय के रूप। समकालीन कथा परिदृश्य के संबंध में विश्वनाथ त्रिपाठी की समझ और विश्लेषण क्षमता दोनों का प्रमाण है। पूर्व कथन में उन्होंने लिखा है कि रचना के कुछ पोर होते हैं, जैसे बांस या गन्ने के, जिन्हें फोड़ने में अतिरिक्त सावधानी की जरूरत पड़ती है। कहना ना होगा कि पृष्ठ संख्या 144 लेखक के पास इन पोरों को पहचानने वाली मेधा भी है और उन्हें फोड़ने का कौशल भी, जिसका प्रयोग वह सूत्रवत छोटे छोटे वाक्यों में बड़े सहज गद्य विन्यास से करते चलते हैं। इन दोनों लेखों के माध्यम से पाठक उस दौर के पूरे कहानी पर दृश्य की खूबियों और खामियों को भली भांति पहचान सकता है। सूत्रों में विश्वनाथ जी ने उस दौर के अधिकांश कहानीकारों पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ की हैं। सार्थक सूत्रों में मूल्यांकन परक निर्णय देते चलना उनकी आलोचना की खूबी है।